ये आकाशवाणी है, अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए वर्तमान विकल्पों की संख्या एक से बढ़ाकर चार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने देश में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में बैंक दबाव में थे और नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता में आने पर एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली ढांचा तैयार किया गया, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति सशक्त बनी रहे।
Also be focusing on a lot of structural reforms, but our efforts are not restricted only to that. We have deepened financial inclusion, took banking to the last citizen, and ensured that citizen-centric banking is importantly served as an interface. 55 crore Jan Dhan accounts have been opened, of which over 55% of them are women, and 66% have been in rural or semi-urban centered bank branches.
वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2014 से करीब 4 लाख लोगों को रोजगार भी दिया है।
We have created 3.94 lakh of jobs since 2014. 3.94 only in public sector banks and they are of different cadres and different levels.
लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। यह सहकारी क्षेत्र में तकनीकी प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा और स्वरोजगार तथा छोटे उद्यमियों के विकास में सहायक होगा। साथ ही इसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार की फैक्ट फाइंडिंग यूनिट ने पिछले 3 वर्षों में 1500 से अधिक फर्जी खबरों की पहचान की है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 72000 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय की सत्यता की जांच करने वाली इकाई अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तथ्यों की जांच करके सही जानकारी प्रस्तुत करती है। लोग सरकार से जुड़े मामलों पर प्रसारित होने वाली खबरों के बारे में अपनी शिकायतें और फैक्ट चेक अनुरोध व्हाट्सएप के हॉटलाइन 8799711259 और पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की वेबसाइट के जरिए भी भेज सकते हैं। पिछले सत्रों की सफलता पर निर्मित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आज कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय वर्चुअल उम्मीदवार ओपन हाउस की मेजबानी करेगा। यह संवादात्मक मंच उम्मीदवारों को अत्यधिक जटिल प्रश्नों का उत्तर और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विशेषज्ञों के एक पैनल की परियोजना, प्रबंधन टीम, नीति और कार्यविधि की चिंताएं तथा तकनीकी विशेषज्ञता के लिए उम्मीदवारों के प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर देगी। कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 12वां चरण शुरू करेगा। प्रस्तावित खदानों में से 13 कोयला खदानों का पूरी तरह से जबकि 12 खदानों का आंशिक रूप से अन्वेषण हो चुका है। नीलामी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है। रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम तथा हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 6900 करोड़ रुपए की कुल लागत से नई दिल्ली में भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर अमरीकी आयोग को चिंताजनक इकाई के रूप में नामित किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने धार्मिक स्वतंत्रता पर आयोग की हाल ही में जारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि आयोग ने पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन जारी करने का स्वरूप जारी रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।